haircuts.
Shall we wait for some people to join? Okay. Walaikum assalam. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitan rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Saturday podcast with Sheikh Atif. آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ.
ٹاپک آج جو ہے وہ
پہلے تو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے. اللہ نے آپ کو بیٹی نوازی آج ماشاءاللہ سے.
جزاک اللہ خیر.
اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے.
آمین آمین.
آپ کے لیے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.
آمین
انشاءاللہ.
آمین.
مے اللہ پروٹیکٹ دا مدر اینڈ دا چائلڈ اینڈ پریزرو دیم.
آمین.
آج بھی آپ آ گئے
شیخ. میں کیوں نہ ہوں.
That's the spirit of working for the country and for the team.
چلو ہاسپٹل سے ادھر. It's hospital دوبارہ.
چلو اچھی بات ہے ماشاءاللہ.
چلے جی, تو آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور جس کے بارے میں ہم بات کریں گے, اس کی جو ایسنس ہے, جو آپ کو اس کی تھیم ہے, وہ شیخ صاحب کی اکثر تقریروں کے اندر اور موضوعات کے اندر وہ ملے گی. جب شیخ صاحب جیت کی بات کریں گے, کامیابی کی بات کریں گے, دنیا میں آگے بڑھنے کی بات کریں گے, اپنے آپ کو منوانے کی بات کریں گے, اور غریبی میں کچھ نام پیدا کرنے کی بات کریں گے, سٹیریوٹائپس کو چیلنج کرنے کی بات کریں گے, چیزوں کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے, اپنے آپ سے لڑنے کی بات کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے ان سب کے اندر ایک کانسیکوینٹ, ایک نتیجہ, ایک رستہ کامن ہے, وہ یہ ہے کہ مخالفتوں کا رستہ. پہلے میں ٹاپک کی طرف براہ راست جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں شیخ صاحب سے ایک سوال کی اس پہ ایک ٹاپک کا سٹارٹ لوں کہ جس سے رستے واضح ہو جائے. اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے دو رستے دکھا دیے, تو ہماری بھی زندگیوں کے اندر آئیڈیولوجیکلی دو رستے ہیں. ایک قوم جو ہے شیخ, وہ رستہ چاہتی ہے, وہ منزل چاہتی ہے بغیر مخالفتوں کے. یعنی لوگ کسی کے رستے کو, کسی کی منزل تک رسائی کو یا کسی کی زندگی کے سفر کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھئی اس کی مخالفت ہے بہت ہے, ہر کوئی تو اس کا مخالف ہے, اس کے ساتھ کھڑا کون ہے, فلاں بھی اس کا مخالف, فلاں بھی اس کا مخالف, فلاں بھی اس کا مخالف, تو وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دوسرا یہ کہ کیا واقعی مخالفتوں کا زیادہ ہونا کامیابی کی علامت ہے یا پھر ناکامی کی علامت ہے, یہ دوسرا سوال ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے جو ہے وہ آغاز کریں اور اس پہ پلیٹ فارم بنا کے پھر ہم آگے ٹاپک کی طرف جائیں.
دیکھیں, ایک وہ تحریک ہے زندگی کی, چاہے فرد کی ہو یا جماعت کی, جس میں بالکل بھی مخالفت نہیں ہے.
صحیح.
یہ زندگی ہے جس میں کوئی عداوت نہیں, کوئی مخالفت ہی نہیں.
شریف لوگ.
نہیں, ایسے نہیں کہیں گے, شریفوں کو بھی مخالفت مل جائے, شریفوں کو ہی تو مخالفت ملتی ہے.
اللہ اکبر.
تو اس پر بہت سوال اٹھایا جائے گا, اس پر بہت بحث کی جائے گی کہ ایک ایسی زندگی گزاری جس میں کوئی دشمن ہی نہیں آیا, جس میں مخالفت ہی نہیں ہوئی, اس میں حسد ہی نہیں ہوا کسی کو, کسی میں کسی کا نہ کوئی انتقامی رویہ آیا, کچھ بھی نہیں ہوا, یہ زندگی تو بہت زیادہ کوشچنیبل ہوگی. تاریخ اور موجودہ حالات اس پر ہمیشہ سوال اٹھائیں گے, یہ کیسی زندگی, کیسا ویژن تھا آپ کی لائف کا, کیسا مقصد تھا آپ کی لائف کا جس میں سب نے ہی آپ کو انڈورس کر دیا. ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے,
چاہتا تو ہر کوئی یہی ہے,
ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے. وہ زندگی ہی کیا جس کو اندر دشمن نصیب نہ ہو, وہ مقام ہی کیا جس کو دشمن نصیب نہ ہو, وہ منزلیں ہی کیا جسے عداوتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے, وہ تحریک ہی کیا جسے تنقید نصیب نہ ہو, वो तगैयुर ही क्या जिसे कमज़र्फ़ नसीब ना हो, बद अखलाक नसीब ना हो, और उसे ये कीना परवर लोग नसीब ना हो, उसे बुग्जी और हासिद और हाकिद नसीब ना हो। वो ज़िंदगी क्या जिसमें आपने हल्की सी टेरिटरी क्लेम नहीं करनी और बाप गरम हो जाएगा आपके खिलाफ इस चीज़ का। आप पत्थरों को उल्टा करने का काम शुरू करें और लोग कबूल कर लें आपको, लोग एक्सेप्ट कर लें आपको, लोग सरों का ताज बना लें आपको, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप से मुलाकात करना चाहें और लोग आपको कहेंगे आ जाओ भाई, आप अपने रब से मुलाकात करने चाहेंगे और दुनिया आपको कहेगी हाँ जाने दो भाई, तो आप तब तक तो अच्छे हैं जब तक आप अच्छे हैं, लेकिन जब आप बहुत अच्छे हैं तब बहुत मसले हैं। जैसे ही आप अपना मॉडल पेश करेंगे, जैसे ही आप अपनी सोच पेश करेंगे, जैसे ही आप अपना नज़रिया पेश करेंगे, और वो नज़रिया कैसा हो सकता है जो सबको कॉम्प्लीमेंट करता है, तो मुस्बत ख्याली अच्छी चीज़ है। पॉजिटिविटी का मतलब ये थोड़ी है कि हम गलत को गलत मत कहें। तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें इल्ला तो हुआ मगर ला नहीं हुआ, इस तारीख पे सवाल उठाए जाएंगे कि सारे के सारे ही दोस्त मिले, बड़ी बात है, फिर मकाम नहीं मिला होगा। ये तो चापलूसियां और मुनाफकतें होती हैं जिनको सब दोस्तियां मिल जाती हैं। मुनाफिक के सब दोस्त होते हैं और सब मुनाफिक के दोस्त होते हैं और मुनाफिक भी सबके दोस्त होते हैं, एक गहरा नुकता है। लेकिन एक तहरीक वो है जिसे ताईद ही मिली, और दूसरी वो तहरीक है जो अबद से लेके अदम से लेके अबद तक सिर्फ मुखालफतें ही हैं, वहां पर दुश्मनियां ही रही। एक है मुखालफतों का होना और एक है उनका दुश्मनी और अदावत की शक्ल में बाहर निकलना और फिर हमलों की हालत के अंदर वो दायमी हालत में रहना। तो एक ऐसी जिंदगी जिधर एक इंसान की जिंदगी में वो खत्म ही नहीं हो रहा कभी, इस पर भी सवाल उठाया जाएगा। वो लीडरशिप क्या का के ऊपर सवाल उठाएगा जिसे इजा जा नसरुल्लाह वल फतह नसीब नहीं हुआ, क्योंकि कभी ना कभी तो फतह होनी है ना। तो एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसा विजन जिसको हर वक्त ही दुश्मन मिले और वो दुश्मन दायम व कायम भी हैं और मजीद और आते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सवाल उठाया जाएगा। मेरी नाकिस और कम इल्म तजर्बे की राय यही है, असल तहरीक इमामों की वो रही है और क्यादतों की वो रही है जिसकी शुरुआत में बहुत मुखालफत थी और उसके अख्तिताम में बहुत ज्यादा ताईद और बहुत ज्यादा दोस्तियां थी, क्योंकि इसमें बहुत बाब है लंबा इल्म का, तजर्बों का, मुशाहदात का, कि कैसे वो मुखालफतों को अपनी रफाकतों में, अपनी मुआफकतों में बदल देता है। ये है मेरा जवाब इस पर।
जबरदस्त माशाल्लाह। लेकिन शेख, अगर मैं इसको मजीद इसके अंदर जो है वो कुछ सवाल अगर पूछना चाहूँ अपने आप को क्लियर करने के लिए, ताकि सबके लिए भी क्लियर हो, शेख, ये मुखालफतों के सामने खड़ा होना, इस पे लोगों को मोटिवेट करना कि कोई मसले की बात नहीं है, अगर मुखालफतें हो रही हैं, अगर सामने वाला नहीं मान रहा, अगर ताइदें नहीं मिल रही, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक रेबेलियस एटीट्यूड क्रिएट करेगा लोगों के अंदर, बागी बनाएगा लोगों को, और हो सकता है वो सही चीज़ के खिलाफ बगावत करें, हो सकता है वो गलत चीज़ के खिलाफ बगावत करें, हो सकता तो ये एक एटीट्यूड के अंदर जो है वो ये नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो ताईद को जब जब वो ताईद को अच्छा नहीं समझ रहा, पॉजिटिव नहीं समझ रहा, और मुखालफत को नेगेटिव नहीं समझ रहा, और कह रहा है दोनों अपनी जगह कायम है, ताईद हो सकता है ठीक हो और मुखालफत हो सकता है वो भी ठीक हो, तो फिर वो मुखालफत से घबराएगा नहीं, अपने ऊपर पॉन्डर नहीं करेगा, सामने वाला मुखालफत कर रहा है, बाप मुखालफत कर रहा है, माँ मुखालफत कर रही है, बीवी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, तो अगर हम उसको कह रहे हैं कि नहीं बेटा मुखालफत के आगे तूने खड़ा रहना है और डट के खड़ा रहना है, कुछ नहीं होगा, और वो तकरीरें सुन ले, और वो आपकी ऐसे तकरीरों के अंदर जो भी जिसको मुखालफतें मिल रही होती है जिंदगी के अंदर, वो माशाल्लाह से एक 5 मिनट की तकरीर सुन लेता है तो इंशाल्लाह एक एक महीना खींच देता है वो उस पर। तो अब वो अगर गलत चीज के खिलाफ खड़ा हो गया और उसको माशरा उसको कह रहा है कि यार लोग अमर बिन मारूफ कर रहे हैं उसके साथ, गलत कर रहे हो तुम, मुखालिफ है, लेकिन वो तो डीड बन जाएगा वहां पे, तो इसको हम किस तरह डील करेंगे?
उससे पहले तो ये क्लास बेहतर है जो हर जगह पर अपना उल्लू सीधा करती है, उन मुनाफकीन से तो बेहतर है ना, जिन्होंने हर हाल में अपनी मुखालफत का ना मजहर दिखाना होता है ना इजहार करना होता है, और वो बातें इनके अंदर ही कहीं रहती है, और कभी कभी उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो किसके मुखालिफ है। कुरान में एक आयत है ना बड़ी जबरदस्त, मुनाफकीन की एक बड़ी निशानी ये है कि जब आवाजें थोड़ी सी बुलंद होती है ना तो उनको हमेशा ये लग रहा होता है कि हमारे खिलाफ ना हो जाए,
कुल्लू सैहतिन अली,
उनको ये
हर बिजली उन पे गिर रही
है, हर बिजली उन्हीं पर गिर रही है, उनको ये लगता है कि उन्हीं के इन्होंने तो ये इससे तो बेहतर है ना कि चलो चाहे गलत भी था, गलत पर भी तो एक मजबूत रवैये के साथ आया ना। इसलिए अबू जहल जो था वो अब्दुल्ला बिन उबई से एक पावरफुल दुश्मन था, अच्छा दुश्मन था, क्योंकि हमें पता था कि हम किस चीज से लड़ रहे हैं। ये तो अपनी मुखालफतें ना दिखाते ना निकालते हैं। बाकी सवाल पर आते हैं कि हम कहते हैं आप मिजाज का कत्ल ना करें,
सही,
आप मिजाज का कत्ल ना करें, आप इल्म की दुरुस्तगी कर दें,
सही,
डट के खड़े रह के मुकाबला करने की सिफत बहादुरों की और इमामों की रही है।
बिल्कुल,
पूरी कायनात कर्बला में, पूरी कायनात उस कर्बला में जो कायनात मौजूद थी वो हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों के खिलाफ थी, लेकिन आप पीछे नहीं हटे, और दुनिया ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून हक के लिए, क्योंकि वो सिफ्ते आलिया थी। मैं इस मौके के अंदर कोई दूसरी बहस नहीं खोलूंगा, आप एक हक, आप डटने वाली सिफत को नहीं खत्म करें अगले के अंदर,
सही, इल्म को दुरुस्त करें,
इल्म की दुरुस्तगी कर लेंगे हम,
सही।
इसलिए मैं यहां पे कहूंगा कि अखलाक बगैर इल्म के बड़ा नुकसानदेह होता है,
जज्बात
बगैर इल्म के और अखलाक के औसाफ जो है चाहे वो मजमूम है या महमूद है, वो दोनों बगैर तस्किया और इल्म के फसाद ही होगा। हमने हमेशा का इल्म बगैर तस्किया नफ्स के फसाद ही होगा, और औसाफ बगैर इल्म के फसाद हो। इसलिए बंदे के औसाफ और उसकी सिफात और एट्रीब्यूट्स बगैर इल्म के फसाद है, और इल्म बगैर तस्किया नफ्स के फसाद है। तो डटने की सिफत, शुजात और बहादुरी की सिफत, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी की सिफत, अपने मन के रस्तों पे चलने की सिफत, तन्हा चलने की सिफात, रेवड़ से हट के जिंदगी गुजारने की सिफत, और फिर रेवड़ के साथ चलने की सिफात, लेकिन एक वक्ती तन्हाई, एक वक्ती अलहदगी, एक वक्ती माशरे से आइसोलेट होना, गारे हिरा में चले जाना 36 साल की मुबारक उम्र, दुनिया किसी और डगर पे है, जमीन और आसमान का इमाम जो है वो एक गार में बैठा है और सोच रहा है, और तन्हाइयों के अंदर अब इंतजार कर रहा है, फैसलों का इंतजार कर रहा है, हिदायात का इंतजार कर रहा है, रिवायात का इंतजार कर रहा है, तगयुरात का, एक इंकलाब का इंतजार कर रहा है। इस सिफत को तो आप नहीं खत्म कर सकते, यही तो किसी विजन और कॉज के लिए शहादतें और जान देने का जज्बा जो है ये तो नहीं खत्म कर सकते। तो अगर वो गलत है तो सिफत के आगे, उसकी ताकत और पावर के आगे इल्म को ठीक करें आप उसका, कि ये गलत इल्म के लिए तुम खड़े हो गए हो,
सही,
ये गलत तजर्बे से तुम खड़े हो गए, असल काम है ये
उसके करने। डटने की सिफत जो है उसको कायम रखें, लेकिन जो उसकी बुनियाद है जिसपे वो खड़ा है या जिसपे उसने स्टांस लिया हुआ है उस पर उसको जो है वो दलील या फिर उसका जो स्टांस है वो वाजे हो कि वो क्यों कर रहा है, यानी उसका वाई जो है वो मजबूत हो,
वाई मजबूत हो,
वाई उसका जो है वो अच्छा हो और क्लियर हो, क्लैरिटी के साथ हो, और उसके बाद उसके ऊपर स्टांस ले। और
माशरे में ये काम मुरब्बी, रहबर,
काउंसलर्स,
उलमा, असातजा, मौलमीन, मेंटर्स, इन्हीं का काम है ना, ये माशरे का के बड़ों का काम है ना कि वो उसको सही करेंगे। بچے کی قوموں کے جوانوں کی صفات مقابلے مقابلے اور ڈٹنے کی صفات تو قوم کے لوگوں کی نہیں ختم کی جا سکتی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں اعلان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حضرت بلال کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ ڈٹنا کیسے ہے, ان کو حق سمجھایا تھا کہ حق کیا ہے. وہ عہد عہد کی جو آوازیں نکل رہی تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سکھایا تھا کہ تم نے عہد عہد پہ ڈٹے رہنا ہے, بلکہ جو صفت تھی وہ ان کے اندر انیٹ تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جذبات تھے اس کو ایک بنیاد دی, وہ علم دیا کہ یہ حق ہے, اس پہ انسان مر بھی جائے کٹ بھی جائے تو وہ کامیاب.
تو مکی دور کو جس بہادروں کی ضرورت تھی وہ بہادری, تو مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات. اور جب پوری دنیا کی ورلڈ پاورز نے مدینے پہ حملہ کرنا تھا تو مدنی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات, لیکن مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات کہ کوئلوں پہ لٹا دیا گیا خباب بن عرب, اور ان کے جسم کی چربی جب کوئلوں پہ جلتی اور اس سے پانی نکلتا اس سے وہ کوئلے بجھتے مگر وہ دین نہ چھوڑے. یہ بہادری کی صفت کو آپ اسلام سے نکال دیں گے, مسلمانوں سے نکال دیں گے تو کیسے ہم نے آخری وقت تک ڈٹنا ہے؟ اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے, روبوٹکس کا دور آ گیا ہے, سائبر سیکیورٹیز کا دور آ گیا ہے, آپ مرد مومن کے اندر اپنے ویژن کے لیے اصحاب الاخدود, اصحاب البدر, جنگ احد اور جنگ خندق اور قادسیہ جیسی جنگوں میں شہید ہونے والے لوگوں کی صفات کو باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کی صفت تھوڑی روکی جا سکتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ شہادتوں کا, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ امامتوں کا, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ قیادتوں کا, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ موت کے ساتھ ان شہیدوں کی رفاقتوں کا, یہ کبھی نہیں رک سکتا. ہاں, علم اور اس کا منہج اور اس کی ڈائریکشن ہمیشہ کوشچنیبل رہے گی, اگلے کے اخلاص پہ تھوڑی شک کیا جا سکتا ہے.
بالکل, مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا موضوع سے قریب آنا چاہیے.
صحیح
شیخ, ویسے تو آپ نے اپنی سٹوری نہیں سنانی لوگوں کو.
اچھا جی.
لوگ مانگتے رہے اور کہتے رہے شیخ بتاتے رہے کہ ہوا کیا ہوا کیا. آپ کی ایک دفعہ جب جیت کا سفر جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس پہ ایک کامنٹ تھا, میں کہ یار یہ عام آدمی نا بولے کچھ ہوا ہے, سب یہ پوچھ رہے ہیں. مطلب کہ ایک تو ایک قوم ہے وہ تو اسٹوری کے انٹرسٹڈ ہوگی کیوریوسٹی کے اندر کہ نہیں نہیں ایسا کیا ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا درد اتنا غم اور اتنا جو الفاظوں کا چناؤ اور جو زخمی دل کی آواز ہوتی ہے وہ کیسے نکل رہی ہے, ایسا کیا ہوا ہے. تو آج اسی موضوع کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ شاید آپ کو کچھ نظر آئے کہ 10 قسم کی مخالفتوں پہ آج بات ہوگی.
زیادہ ہیں بلکہ,
آج ہم 10 پہ اکتفا کریں, میرے خیال 10 بھی پورے نہیں ہونے والے, لیکن انشاءاللہ اگر ہو جائیں تو میں شیخ صاحب کو مائک ہینڈ اوور کروں گا اور میں بھی سننا چاہوں گا کہ وہ کون سے 10 قسم کے بڑے مخالفین ہیں جو آپ کو آپ کی زندگیوں کے اندر ٹکریں گے. شیخ صاحب نے بھی سامنا کیا ہوگا, اور ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نیچ کے اوپر ان سے ملاقات ضرور کرتا ہے.
ہاں, میں یہ بات پہلے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہوں گا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میرے سننے والے, میرے سامعین اور میرے چاہنے والے یا میرے نہ چاہنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں, ہم میرا کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں رہا کہ بھائی پوری کائنات کے سارے ایکسپیرینسز بھائی میرے ساتھ ہو گئے. میں اس بات کی بھی تھوڑی سی بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ تو سارے ہی مسئلے ہوئے ہیں سوائے ایک مسئلے کے. میری نظر میں قوم کے ایک رہبر اور ایک استاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے.
مخالفتیں
میں کہوں گا, لیکن میں ایک پازیٹیو کیریکٹرسٹک کے تحت ہر آدمی کا دفاع کرنا لازم سمجھتا ہوں جنہوں نے خدمت کی ہے لوگوں کی. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا کوئی اور بیان کر گیا ہے جو لوگوں کی زندگیوں نے, اب آپ بھی اپنی زندگی سنائے گا نا, ابھی اس میں سے بھی بہت اصول نکلیں گے آپ کی زندگی میں بھی. بہت
غم ہوں گے,
غم تو ویسے بڑے عظیم غم ہوں گے اباب صاحب کو, لیکن میں کوئی انوکھا انسان نہیں ہوں. میں نے ہمیشہ سے یہ بلیف کیا ہے کہ آواز بنو, یہ مت کہو کہ صرف میں ہی ہوں. تو سسٹم میں آپ کہیں बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे मोटे लोग भी हैं। आप यहां से मंजूर कॉलोनी चले जाएं, वहां से एक शख्स निकाल लें, उसकी कहानी सुन लेंगे, आपको किताब मिल जाएगी।
बल्कि मंजूर साहब जो थे ना, जिनके नाम पे कॉलोनी है, वो एक कहानी होंगे,
वो खुद भी एक कहानी होंगे। तो ये कहना कि जी सिर्फ हमारी कहानी के अंदर कोई ऐसा बात आ गई, हमारी कहानी को शेख आतिफ की ऐसी हो गई जिसे सुनने के ऊपर जो ना कोई खजाने मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं। एक बस शर्म हया होती है।
असल में वो इसलिए हम कहते हैं, देखें हर इंसान गुजरता है बहुत सारे फेजेस से लाइफ के अंदर, मसाइल से। एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी इकोनॉमी को देखते हुए, बिजनेस को देखते हुए, वो भी किसी मसले से गुजर रहा होगा, और एक खोखे वाला भी गुजर रहा होगा। लेकिन जो फर्क आता है ना, कि वो सारे एक्सपीरियंसेस को रिलेट करके और उससे जो है खुलासा निकालना है,
बस वो एक बस एक यही अल्लाह ने कुछ दिया है तो वही हम बयान करते हैं
और वही हम आपसे भी सीखते आए हैं। हालांकि बहुत सारी चीज, लेकिन हम उस पर गौर, असल चीज क्या है, लोग गुजर रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी किसी का कॉमेंट आया था, आई एम फाइटिंग सिंस 2013। अब बंदा 8 साल से लड़ रहा है, लेकिन 8 साल के अंदर कितने,
पहले तो आप इनको बोलें कि जितने भी लोग हैं वो टैग कर लें, क्योंकि आज बड़े मसाइल सॉल्व हो जाएंगे जो जवाब मिलेंगे लोगों को।
मुखालफों को टैग कर लें,
मुखालफतों को टैग ना करें, अपने यारों दोस्तों को टैग करें, और जिन लोगों के मसले सिर्फ उनकी स्ट्रेटेजिकल बिहेवियर के वजह से फंसे हुए हैं, उनके मसले सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये मुखालफतों ने दम तोड़ना होता है एक टाइम पर, तो उनका एक वक्त है जब उन्हें दम तोड़ना होगा। उससे पहले अगर वो टूट जाएंगी तो आप नहीं सीखेंगे, और अगर वो ज्यादा देर टिक गई तो आप टूट जाएंगे आगे से। तो इसकी एक लाइफ स्पैन होती है, तो लोगों को चाहिए कि उनकी जिंदगियों में ये मुखालफतें खत्म होंगी, बट दे शुड ब्रिंग, जितने लोगों का फायदा हो सकता है टैगिंग भी की जाए और लोग सुने आके कि उनकी जिंदगियों के अंदर कहां उनकी बेवकूफी है और कहां उनके गलत फैसले हैं और कहां उनकी गलत चॉइसेस हैं और इंतखाबात हैं जहां से वो फंसे हुए हैं इस टाइम पर। आपके सवाल पे माना चाह रहे हैं अपनी बात करने।
अभी रिसेंटली मैंने एक जुमला सुना है किसी का, जिंदगी में एक दुश्मन जरूर होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में?
ला ततमन्नु लिकाल उदुब, दुश्मन से मुलाकात की चाहत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी के अंदर एक नई जंग जरूर होनी चाहिए, दुश्मन तो खुद आ जाएगा। नए मकामों की तरफ बढ़ना चाहिए, दुश्मन तो खुद आ जाएंगे। दुश्मन की चाहत नहीं होनी चाहिए, टेरिटरी क्लेम करने की चाहत होनी चाहिए।
और कोई फ्री में देगा नहीं,
और कोई बनी इसराइल मूसा अलैहि सलाम के हाथ में फ्री में तो देगा नहीं।
सही बात,
प्राइस देनी पड़ेगी उसके लिए। आपके सवाल का जवाब, 10 किस्म की या 10 से ज्यादा किस्म की, 10 किस्म की मुखालफतें जो इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनती हैं, जब भी वो एक तहरीक की तरफ, एक तहरीक चलाता है अपनी जिंदगी में या औरों की जिंदगी में। नंबर एक, कुरान की एक आयत है, बल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतु बिइल्मिही, कि उन्होंने इसलिए झुटला दिया, उन्होंने इसलिए डिनाई कर दिया, उन्होंने इसलिए मुखालफतें की क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आए। बेमा लम युहीतु बिइल्मिही, ना उन्हें आप समझ में आए, ना उन्हें आपके आपके मैसेजेस समझ में आए, ना आपका दर्द समझ में आया, उन्हें समझ ही कुछ नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से लोग मुखालफत करते हैं, कि उन्हें आप समझ नहीं आए, आपका पैगाम ही नहीं समझ में आया। अ लॉट ऑफ पीपल विल अपोज यू, क्योंकि आपकी बातें, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके काम, आपके फैसले, आपकी चॉइसेस, आपकी सल्तनत, आपके मामलात, आपका रहन सहन, आपकी चीजें कम्युनिकेशन गैप की वजह से या किसी और गैप की वजह से या कोई और बात थी, उन्हें समझ ही नहीं आई। वो समझ ही नहीं सके, वो इदराक नहीं कर सके, तो वो मुखालिफ हो जाएंगे। तो एक पार्टी जिंदगी में आपको ऐसी मिलेगी जिन्हें बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड यू, वो आपको समझ नहीं सके, वो आपके मुखालिफ हो जाएंगे। बल्कि शुएब अलैहिस्सलाम को तो उनकी कौम ने बड़े अजीब जुमला कहा, जब उन्होंने हक की दावत पेश की, हक की तहरीक का ऐलान किया अपनी कौम के आगे, तो उन्होंने कहा, मा नफकहु कसीरम मिम्मा तकूल, हमें तो तुम्हारी बात की गहराई नहीं समझ में आती। तो कभी कभी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता, वो मुखालफत कर देते हैं, और कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ जाता है जिस वजह से वो मुखालफत कर देते हैं, कभी को तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होता। नंबर दो, वो लोग आपकी मुखालफत में उतर आएंगे जिनका आपसे कोई मुकाबला नहीं है, जिनकी आपसे कोई हसद भी नहीं हो शायद, जिनका आपके साथ कोई रिश्ता ताल्लुक भी ना हो, जज्बात भी ना जुड़े हो, मगर आपका कत्ल लाजिम था किसी कुलिये में शामिल होने के लिए। आपका कत्ल लाजिम था खुद को मासूम साबित करने के लिए। आपकी बलि चढ़ाना बहुत लाजिम था हल्के को ये जिम्मेदारी, हल्के के आगे ये मनवाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। कुछ लोग आपके मुखालिफ इसलिए होंगे क्योंकि आप एक सॉफ्ट टारगेट हैं और सब आपको मारने के लिए आएंगे, या कोई खास आपको मारने के लिए आएगा कि देखो तुम्हारा हिस्सा बनने के लिए इसको मारना लाजिम था, मैंने मार के दिखा दिया, तो तुम्हें एक मासूम की बलि चाहिए थी ना, हम एक मासूम की बलि चढ़ा देते हैं आज। और ऐसे कितने मासूमों को सिर्फ दरिंदों को साबित करने के लिए एक आदमी मारता है। तीसरी एक मुखालफत जो आपके सामने खड़ी होगी वो इसलिए कि उन्होंने आपको बहुत कमजोरी की हालत में देखा होता है, उन्होंने आपको बहुत ज़ोफ में देखा होता है, दे हैव सीन यू इन अ लॉट ऑफ वीकनेस। साथ के यार थे, साथ के दोस्त थे, साथ के साथ ही थे, साथ पले बड़े थे, साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, साथ कंपनी बनाई थी, साथ तिजारत शुरू की थी, लेकिन जब साथ होते हैं ना तो अंदर की कमजोरियां बहुत पता होती हैं लोगों को, लेकिन उन्हें शेर के कलेजे में अंदर धड़कता हुआ दिल नहीं पता होता। वो हड्डियां और गोश्त से अंदाजा लगा रहे होते हैं जिगर का साइज क्या होता है। तो इस बेसिस पर उस वक्त जो आपकी फिजिकल हालत होती है, जो आपकी जहरी हालत होती है, उस लिहाज से तो आपके साथ चलना मसला नहीं था, लेकिन जैसे ही फ्लाइट आपकी तेज होगी, जैसे ही उड़ान आपकी थोड़ी सी तेज होगी, लाजिम था उनका कि हमारे कत्ल का रिवाज पैदा होता, लाजिम था उन पर। वो हूद अलैहिस्सलाम को कहा ना कौम ने के कद कुंता मर्जुअन फीना कबला हाजा। हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद थी कि तुम वो करोगे जो हम कर रहे हैं, ये किस रास्ते पे चल पड़े हो। तो कभी कभी मुखालफतें इसलिए आ जाती हैं क्योंकि आप फिट नहीं हो सके या फ्लाइट ज्यादा हो गई। एक और चौथी वजह जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में मुखालफतें आएंगी, मेरे बच्चे, मेरे कौम के लोग, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी बैठे हैं, हर वो हक जो गलियों कूचों से लेके बड़े बड़े महलों के अंदर आज बेदारी और शऊर की उस जिंदगी में शामिल हो रहा है और दाखिल हो रहा है, जहां उसने कलमा हक बुलंद करना है, जहां उसने अपनी जिंदगी में आजाद होना है, जहां उसने अपने आप और अपने रब से मुलाकात करनी है, जहां उसने एक संगे मील की बुनियाद रखनी है, मेरे मुल्क की हुकूमत होगी, मेरे मुल्क के सियासतदान होंगे, मेरा पाकिस्तान होगा, खानदान होंगे, मेरी कौम की बेटियां होंगी, मेरे कौम के बेटे होंगे, मेरे कौम के लोग होंगे जिन्हें बहुत सख्त मुकाबला आ रहा होगा। चौथी सिफत उनकी ये होगी, दिल का अच्छा था, नर्म भी था, हिल्म भी था उसके अंदर, आजजी भी थी, मगर बस मिजाज में एक सरदारी थी। कुछ लोगों को अल्लाह ने बनाया होता है कि उनकी शान रखी होती है अल्लाह ने, उनकी शान थी कि वो अल्लाह ने उन्हें वो मिजाज में एक बादशाहत और सरदारी दी। तो क्योंकि ऐसे गोश्त की लज्जत बहुत होती है जो थोड़े से मिजाज में चौड़े होते हैं, जो थोड़े से मिजाज के अंदर जरा बहुत ज्यादा जल्दी नहीं झुकते किसी के आगे, रब के आगे झुकते हैं, लोगों के आगे नहीं झुकते। इनसे भी मुखालफतें हो जाती हैं क्योंकि आपने जी हुजूरी नहीं की होती, आपने हद से ज्यादा तलवे नहीं चाटे होते किसी के। आप छोटी सी दुकान लेके भी बड़े बड़े सरदारों के सामने होंगे, मगर वकार और इज्जत से जी रहे होंगे। दो लोग आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनमें से एक वो था जिसने अपना ऊंट बांधा, जानवर बांधा, तरीके से, वकार से, डिसिप्लिन के साथ आके सलाम किया। आप सब ने फरमाया ये ज्यादा बेहतर मुसलमान है उससे जो जल्दबाजी में आया, अगरचे मुझसे ही मिलने आया। आप सब ने देखा कि वो पूरे प्रॉपर से आया, हर चीज प्रॉपर करके। तो कुछ लोग जरा मिलते हैं मगर जरा सर नहीं झुकता उनका, इज्जत देते हैं मगर सर नहीं झुकता, ये भी चुप जाते हैं बहुत सो को, ये मिजाज चुप जाता है बहुत सो को। पांचवा एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से आपकी मुखालफत होगी वो है कि आपको एक खास जगह से ताईद आ गई है, एक खास ग्रोह ने, एक खास फिरके ने, या एक खास सोच ने, एक खास कंपनी ने, एक खास ग्रुप ने, या खास फर्द ने अब आपकी ताईद कर दी है, वो चुप जाएगी लोगों को अगरचे आपने किसी का बुरा भला नहीं किया होता। इनकी ताईद उधर से आ गई है तो आपके एंटी एक महाज खड़ा हो जाएगा, बड़ा महाज खड़ा हो जाएगा अगरचे आपने कुछ नहीं किया होगा। और कभी कभी आप किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, आप कमजोर वक्तों में किसी अच्छे इंसान के साथ हाथ मिला लेते हैं या किसी भी पावर की तरफ हाथ मिलाते हैं, तो आपकी जो आपके दोस्तों के दुश्मन थे कभी उनकी तरफ रुझान और मिलान होने की वजह से अपने भी पराए हो जाएंगे उस टाइम पर, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर उनको कबूल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिससे लोग मुखालिफ हो जाते हैं आगे से। एक और बड़ी वजह मुखालफतों की ये होती है कि अनजाने के अंदर ना कभी गाड़ी से उतर के आदमी बड़ी गलत जंग ले लेता है और एस्टिमेट नहीं किया होता, उसने अंदाजा नहीं लगाया होता कि ये कितना बड़ा भारू है जिससे मैंने पंगा ले लिया, जिससे मैंने प्रॉब्लम हो गई, जिससे मेरी झड़प हो गई है। यहाँ पर अनजाने के अंदर बहुत से लोग गलत शेर से मसला खराब कर लेते हैं और वो मुखालफत बहुत भारी पड़ जाती है। और कभी कभी इंसान जो है वो इस वजह से उसकी छठा है और छठा उसकी मुखालफत की वजह आपकी ये होती है कि बहुत लोग आपके पास आएंगे, बड़े मोतकिद होंगे आपके, बड़ी उनकी अकीदत होगी आपके साथ, लेकिन और ज्याले जो होते हैं ना वो दलील पर जान देने थोड़ी आते हैं आपके लिए। ज्याले जो आते हैं वो तो जान देने आते हैं आपके लिए, क्योंकि उन्हें आपसे मोहब्बत होने के लिए एक स्पॉट चाहिए होता है, और जब वो आप में वो नुक्ता या वो सिफत देख लेते हैं तो वो अपनी पूरी साइकोलॉजी आपको दे देते हैं। ये है ज्यालों की तारीफ। तो ज्याले की जब अंधी ब्लाइंड फॉलोइंग टूटती है ना अपने किसी रहबर के लिए, अपने लीडर के लिए, किसी उस्ताद के लिए या बाप के लिए, या किसी नज़म के लिए, या किसी मुल्क के लिए, या किसी जमात के लिए, तो जब वो ज्याले की अंधी ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधी तकलीद टूटती है उसकी, चाहे वो उसकी अपने किसी हादसाती वजह से हो, लेकिन अक्सर ज्याले की तकलीद जो है ना, या अक्सर ज्याले की जो ब्लाइंड फॉलोइंग है वो एक खारजी अंसर आके करता है, वो बाहर से आके एक फूंक मारी जाती है जिससे वो जिसको वो अपना इमाम और पीर और रहबर मानता होता है वो उसको ऐसा गिराता है अपनी माइंड के अंदर और एक बहुत बड़ी मुखालफत का बाप खड़ा हो जाता है आपके खिलाफ। तो वो जो कभी कहते थे कि हम जान दे देंगे आपके लिए, वो जो कभी कहते थे कि हम जान दे देंगे आपके लिए, गले पे हाथ भी उन खुश नसीबों को ही नसीब होता है, हमारे गर्दनों पे हाथ भी उन्हीं खुश नसीबों को नसीब होगा जो कभी कहते थे कि हम तो आपके लिए जान दे देंगे। आपको भी मुबारक हो हक के रास्ते में या जिंदगी के रास्ते में, ऐसे लोग मिलेंगे। तो जब भी कोई आपको आके कहे ना आपके लिए हम जान दे सकते हैं, आपके लिए हमारी जिंदगी कुर्बान है, प्रोसेस से जरूर गुजारिएगा, प्रोसेस से गुजर के आएगा तो ना खुद को नुकसान पहुंचाएगा ना आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरीके से आठवीं वजह जिसकी वजह से मुखालफत होती है वो है कि बहुत से लोग आप ही की नकल कर रहे होंगे, बहुत से ऐसे हासिद हैं जो आप ही की नकल कर रहे होंगे, आप ही की नकाली हो रही होगी, आप ही की कॉपी पेस्टिंग चल रही होगी उनके यहां, आइडिया भी आपसे लेते होंगे, आइडिया भी क्रिएटिविटी का आपसे छापते होंगे, क्लाइंट भी आपके तोड़ते होंगे, आप ही से सब कुछ उनको मिलता होगा, मगर अदावत भी आपसे रखते होंगे क्योंकि वो ओरिजिनल ओईएम ओरिजिनल इंजन और ओआईएम ओरिजिनल आइडिया मैन्युफैक्चरर्स और क्रिएटर्स नहीं होते। आइडिया क्योंकि आपसे लेना होता है तो मुखालफत आपसे इसलिए होती है क्योंकि उनसे आइडिया नहीं क्रिएट हो पा रहा होता, मगर नकल आप ही की करनी होती है। तो ये नकालों की एक बड़ी मुखालफत होती है जो रेफरेंस आपसे ले रहे होंगे, बनाना कैसे है, करना कैसे है, चलाना कैसे है, बोलना कैसे है, मैनेज कैसे करना, मगर कभी कबूलियत नहीं होगी उनके अंदर। और नवी मेरी नजर के अंदर कभी कभी हमारी अपनी आठवीं या नवी कभी कभी हमारी ज्यादतियों की वजह से भी मुखालफत हो जाती, हम वक्त की नजाकत में कर जाते हैं इंसान कुल्लू बनी आदम खत्ता के तहत, कभी ज्यादती अल्फाजों से हो जाती है, कभी कलामों से हो जाती है और कभी मिजाजों से हो जाती है। अगले में भी माफ करने का दिल गुर्दा नहीं था, पूरी पूरी निकालेंगे आपके साथ आके, ऐसी किड़ पालेंगे अपने अंदर कि दर गुजर करने की हिम्मत नहीं होगी उनकी, तो वो इसलिए मुखालफत पे उतर आते हैं कि आपने गलत किया होता है और मैंने खुद गलत किया होता है, लेकिन उनमें दर गुजर करने की हिम्मत नहीं, उन्हें हमें वक्त देने की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने हमें इवॉल्व होने की, रेक्टिफाई करने की, इसलाह करने की वक्त नहीं दिया होता। और फतवे जारी हो चुके होते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही हैं, एब्सोल्यूट ईवल आप स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे और ये जिंदगी का एक बाबरा है। और दसवीं और आखिरी वजह होती है बड़ी मुखालफतों की कि एक बड़ा हुसन मार्केट में, एक बड़ा हुसन, बड़ा जमाल, बड़ा कमाल, ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन और एसओपीज का पहाड़ होता है, किताबों का, इल्म का, फनून का एक मैमार होता है, मगर जब उसके सामने एक गरीब फकीर, एक दरवेश, एक कम इल्म, एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक इनडिसिप्लिन आदमी, कम पढ़ा कम इल्म शख्स रब के फैसले की वजह से अगर उसे अल्लाह नसीब में दे दे एक कामयाबी जैसे जालूत को दी अल्लाह ने, जालूत ही था ना, तालूत है जालूत था, जैसे वो, तो कौम उसकी मुखालफत में ये बड़े बड़े सिस्टम्स वाले उसके खिलाफ आ जाते हैं कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता था, ये डिजर्व नहीं करता था, एक बड़े ही पढ़े लिखे की, ऑर्गेनाइज सेटअप्स वाले की, डिग्रियों वालों की, दरवेशों के साथ बड़ी मुखालफत, और मैथ्स वालों की, मिरेकल्स वालों के खिलाफ, तवक्कुल वालों के खिलाफ एक बड़ी मुखालफत, एक बड़ा मिजाज। ये है जिंदगी के वो बड़े बड़े असबाब और बड़े बड़े रिवाज जो हक के रास्ते में और जिंदगी में आपको आएंगे, जिसके तहत आपने संभल के चलना है, बड़ा इल्म चाहिए इनको डील करने के लिए।
कहाँ मिले ये सारे?
आपकी आवाज क्यों कम हो गई है?
नहीं, मैं तो किसी, मैं देख रहा था किसी कमेंट तो नहीं आ गया, नंबर बताया शेख साहब बताया, मैं देख रहा था कोई कमेंट तो नहीं आ गया, शेख साहब नंबर बताया, नाम बताया, कौन है,
आ रहा है क्या? नहीं,
अल्लाह अकबर,
इसका मेरी जिंदगी से नहीं ताल्लुक रखे, ये तो एक थोड़ा बहुत आपके आगे जो मैं समझता हूँ ये होगा, ये तो होगा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ملا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پیارے نبی,
آپ نے جب سیرت پڑھائی تھی
رمضان,
قدر اللہ ما شاء فعل, وہ
سیرت ہی دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ندیم بھائی کے گھر پہ بہت ہی اعلیٰ سیرت پڑھائی تھی اور وہ ریکارڈی قدر اللہ
میرے حساب سے اس لیے وہ صحیح طرح اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ چلے گئی, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی کہ اللہ تعالیٰ چارہ بھی ایک اور دفعہ پڑھے.
نہیں ویسے ہونی چاہیے سیرت پڑھانے کا, میرا بہت دل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں جس درد سے دیکھتا ہوں, میں اپنے اس پیارے نبی, میرے سونے نبی اور اس شہزاد نبی, اجمل الخلقی, انور الخلقی, عارف الخلقی, اشرف الخلقی, انور الخلقی, اعظم الخلقی, عالم الخلقی, مخلوق میں اس سے بڑی ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی ایک فلسفہ ہے, ایک آگ ہے وہ زندگی. درد والوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی درد نہیں ہے اس دنیا, اتنا بڑا درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی.
شیخ آپ گزرے ہی ہوں گے اس سے, تو میں اپنا چھوٹی مائکرو پہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بڑا سنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, اور لوگوں کے بھی اس پہ سوال ہیں. تو یہ کہ جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں کسی مخالفت سے اور دل ہمارا پھٹ رہا ہوتا ہے اس وقت, یار آپ دیکھ نہیں رہے سامنے والا زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس نے میرا ایک ایرر دیکھ کے میرا جز دے کے کل اڑا دیا, اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے, تو سامنے نہ کہتے اس نے سفر کے اندر آیا وہ مخالفت تو ملیں گی, دل بڑا کرو دل بڑا کرو. تو یہ جو سارے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں دل بڑا کرو.
دیکھیں
لیکن جو ہے آپ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, یہ میرا سوال ہے, کیونکہ یہاں پہ جوان قوم بیٹھی ہے الحمدللہ. جب ہم برداشت کرتے ہیں کہ انرجی ہمارے اندر بھی ہے, تو کیا جواب دینا بنتا ہے یا جواب نہیں دینا؟ مخالفوں کو کہتے نا لیٹ یور لیمبورگینی میک دی ساؤنڈ, آپ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ عدیل کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو جواب دینے کی, 10 کتے بھونگ رہے ہوں 11 نہ بجے.
شیر ہوتا ہے
یہ آپ کا جملہ ہے,
شیر ہوتا ہے, 10 کتے بھونگ رہے ہیں تو شیر 11 نہیں بنتا.
کیا بات ہے, وہ اس پچ کے ساتھ اور وائس ووکل کے ساتھ امپیکٹ ڈیفرنٹ ہے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. شیخ یہ بتائیں کہ کیا کریں, جواب دیں نہ دیں؟
سب کا دل کرتا ہے, میرے قوم کے لوگوں کا دل اگر آپ چیر کے نکالیں گے تو پھٹ جائے گا دل آپ کا. میرے لوگ بیٹھے ہیں آج, میرے ملک کے لوگ بیٹھے ہیں, میری قوم کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کسی ایک کا بھی اب آپ بھائی سینہ کھولیں گے نا آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اتنا دکھ ہے میرے لوگوں کو, ہمارے لوگ انسان کو. میں کہتا ہوں امریکہ میں بھی ہوگا نا, کافر ہی کیوں نہیں ہوگا, آپ اس کا بھی سینہ چیرو گے نا پھٹ جائے گا دل آپ کا. یہ انسانوں کو بڑے بے رحمی سے یہ تاریخ رہی ہے کہ رحم نہیں کیا لوگوں نے, درگزر نہیں کیا, معاف نہیں کیا لوگوں نے, اس طرح مارا ہے اس طرح. اور ایک
ہیڈ شاٹ مار کے
تجھے وہی جیت کے سفر میں میرے الفاظ تھے,
میں لوگوں کو لنک کرا رہا ہوں کہ یہ کنیکٹ کر جائیں.
جیت کے سفر کے اندر تھا کہ لوگ تجھے ایسی قبروں میں گرا کے آئیں گے, سروں پہ گولیاں ماریں گے. لیکن میں جس بات کو کہنا چاہتا ہوں نا وہ بات ہے کہ ایک تو ہے نا کہ ایک بے رحم نے ایک معصوم کو مارا, ایک سردار جب گرتا ہے نا سسٹم کے اندر, ایک بادشاہ جب گرایا جاتا ہے, ایک جس کی شان اللہ نے بنائی, اس نے کاٹ کاٹی محنت کی, کھڑا ہوا میدان کے اندر, اس کی اللہ نے دیکھیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ایک سردار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار تھے, ایک بادشاہ تھے آپ. آپ کبھی بھی ان کی تاریخ میں سیرت کے باب میں نہیں دیکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اعلیٰ شخصیت تھے, ایک چودھری تھے آپ, بغیر کہے ہوئے آپ ایک بادشاہ سردار تھے. اور طائف کی وادیوں میں آپ دیکھیں کرائے کے گنڈوں کو ہائر کر کے انہوں نے میرے نبی پر پتھروں کی بارش کر دی ظالموں نے. یہ نہیں دیکھا کہ ایک انسان کو تم نے, تم دیکھو تو مار کس کو رہے ہو, وہ ایک بادشاہ ہے, وہ ایک سردار ہے, वो आसमानों का सरदार है, वो जमीनों का सरदार है, वो जिनों का भी सरदार है और वो फरिश्तों का भी सरदार है। अमाम इमाम उल अंबिया इमाम उस सकलैन, इतने बड़े रुतबे की शख्स को किस बेरहमी से मारा इन लोगों। और जर्फ देखें आप सल्लम का कि जब ये जुल्म की एक इंतहा आप सल्लम पे की जा रही थी, जुल्म की एक बारिश आप सल्लम पर जब की जा रही थी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जालमों के, जब जालमों के जुल्म बच्चे वहां के खड़े कर दिए उन्होंने, बच्चों ने कंकरियां मारी उस मासूम तरीन इंसान को जिसने कभी किसी के बाल को नुकसान ना पहुंचाया, जिसने कभी जिंदगी में किसी को नजायज नहीं, कभी उनके लफ्जों से कभी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से भी कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ होगा। ऐसा पाकीजा तरीन मुताहिर शख्स जिसकी जिसको सहाबा कहते हैं, इतना प्यारा चेहरा था देखा ही नहीं जा, देख ही नहीं सकता था, उनकी उनकी शक्ल, उनकी खूबसूरत हसीन चेहरे को देख के इंसान को अपने गुनाह याद आ जाते थे। उनकी चाल में वो कमाल था, उनकी उनकी चाल चलन में वो जमाल था। ऐसे शख्स को मार, सोचें क्या दिल होंगे वो जिन्होंने तेरे नबी को जख्मी किया होगा, कैसा दिल होगा वो जो आप सल्लम की नजरों में नजरें डाल के जो है ना ज्यादतियां कर गया आप सल्लम के साथ, कैसा दिल होगा वो। कैसा एक दिल वो थे जो जूतियों जो जो नबी सल्लम की जूतियां सरों पे रखते थे, आप सल्लम की वजू के पानी को अपने जिस्म पर मलते थे, आप सल्लम के पसीने से परफ्यूम्स बनाते थे। कुछ दिल ऐसे थे और कुछ दिल ऐसे थे, सोचें वो कैसे दिल होंगे जिन्हें तरस नहीं आया आप सल्लम को मारते हुए, जिन्हें दिल नहीं फटे उनके उनके ऊपर हाथ उठाते। अल्लाहु अकबर। फिदा का अबी व उम्मी, मेरे 10 बाप भी मेरे नबी पर कुर्बान हो, अगर हो मेरी माए भी 10, पूरी कौम की माए हमारे नबी पे कुर्बान हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त आसमान से अदील भाई एक फरिश्ता नाजिल हुआ और उसने कहा आज तो बहुत हो गया है, मतलब उसको गैरत आ गई उस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किस तरह का जुल्म किया, इन जालिमों ने किस तरह का जुल्म किया आप सल्लम। अल्लाहु अकबर। आप हुक्म करें मैं पीस के रख दूं इनको, 2 पहाड़ों में मैं इस कौम को इबरत बना दूंगा क्यामत तक के लिए कि इन्होंने आप जैसी हस्ती के ऊपर ये ज्यादती की। सलाम है उसके ऊपर, क्यामत तक सलाम है उसके ऊपर और क्यामत के बाद भी सलाम है उसके ऊपर जिसने तब भी रहम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया इनको मत मारना, क्या पता इनमें से कोई हक के रस्ते पर आ जाए। मैं तो शायद अपने नबी की पैर की खाक तो दूर की बात है, उस इलाके की खाक के भी बराबर नहीं होगा मेरे अंदर ये बातों की। मैं गुफ्तार का गाजी तो बन गया, शायद किरदार का गाजी ना बन सकता, लेकिन अगर मॉडल हमारा नबी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो भैया अदील भाई तेरे नबी ने और मेरे नबी ने मुंह से बयान नहीं किया कभी भी, जर्फ था आपके अंदर। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु एक दफा देने लगे जवाब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने कहा वो मेरे ऊपर ज्यादती करता रहा, जुल्म गंदी बातें करता रहा, गलत बातें करता रहा, आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने जवाबी कार्रवाई दी, आपने मुंह फेर लिया आगे से। फरमाया जब तुम जवाब, जब वो ज्यादती कर रहा था तो अल्लाह जवाब दे रहा था, अब तुम जवाब देने जा रहे हो तो फरिश्ते हट गए हैं इसलिए मैंने मुंह फेर लिया। क्योंकि रिवायत ये कहती है मन आद अली वलियन, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, अल्लाह कहता है जिसने मेरे दोस्त और मेरे जिसने अल्लाह वाले के साथ दुश्मनी ली, जिसने हक के रास्ते पे चलने वाले अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी ली, अल्लाह जंगों का ऐलान करता है आसमानों से उसके खिलाफ। हम भी हर्ब का ऐलान करते हैं, जंग का ऐलान करते हैं। तो जब अल्लाह आपकी जंगें लड़ने आ रहा है, लेट अल्लाह डिसाइड। लेकिन ऐसा नहीं होता कि दिल नहीं फटते, मेरा भी दिल फट जाता है कभी कभी, खोले कल इंसान ज़ईफ। लेकिन रब को आप, रब जो जीत ला के देता है ना, और रब जो जवाब रकम कराता है, वो ऐसा रकम कराता है कि नस्लें याद रखती हैं अगलों की कि मक्के से कभी कोई शख्स आया था। आज तक दुनिया याद रखती है कि मक्के से कोई शख्स आया था, नाम है उसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनका अपने उनका फॉलोअर हो। कल मुझे भी मेरा ये दर्स याद दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊं। बार यही है, बार जो उन्होंने सेट की वो यही है कि जवाब ना दें। और आखिरी बात आदिल भाई, जब जवाब देना तो फिर जंगे बदर जैसा जवाब दे। याद रखे सदियां के जवाब दिया आपने,
क्या बोल
बोले अगर कितना टाइम हुआ हमारे पॉडकास्ट को?
मेरे हिसाब से हो गया
आज का मौजू खत्म।
मौजू खत्म नहीं है, ये इस पे अमल कर ले।
हाँ,
इस पे अमल कर ले, इसको सीख ले, कम बातें नहीं, इसके अंदर कम खुलासा है।
बड़ी बात है,
बड़ी बात है।
एक और बात भी मैं यहाँ आपसे कहूंगा आदिल भाई, कि ये लोगों के सीने चौड़े जो है ना, जब आपको लोग मारते हैं ना, जब आपके साथ ज्यादतियां होती हैं, जब आप खुद गलतियां कर रहे हो, ये दिल बड़ा ही, लोग कहते हैं ना दिल बड़ा करें, दिल बड़ा हो ही जाता है, दिल बड़ा हो ही तब जाता है जब आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बहुत दिल बड़ा होता है इससे, वो एक वजन पैदा होता है जब दुनिया आप पे तीरों की बारिश कर रही है।
अच्छा सवाल आता है, जिगर कलेजा किस तरह बड़ा करें? भाई सुन लो जवाब क्या कह रहे हैं।
जिगर का साइज तभी बड़ा होगा, वो जिगर जो हमारी तकरीरों में आया है, जितना आप तीरों की हिट लेते रहेंगे तो वो तीर आपके जिस्म को तो नुकसान दे रहा होगा, मगर सीने का साइज बढ़ा रहा होगा। इट इज गोइंग टू गिव लॉट ऑफ लिमिट, अनलिमिटेड पोटेंशियल टू योर हार्ट। मेरे ख्याल से आज आप भी बहुत थके हुए हैं। मेरा हिम्मत है तुम्हारी कि आज तुम
कर दिया आपने मौजू के साथ, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात लेंगे,
ले लें, कोई सवाल है लोगों के ले लें।
सवाल है कोई तो कुछ सवालात ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। आज के टॉपिक से अगर रेलेवेंस है किसी सवाल की,
पहले तो इनसे पूछें कि कलेजों को ठंड मिली है या नहीं मिली।
ये बताएं कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, आज का आपको जो है वो कलाम कैसा लगा, आज के जो हमने डिस्कशन किया। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह,
माशाल्लाह। सवाल, बड़ा सवाल आया कोई?
बड़ा सवाल है, जिंदगी क्या है?
जिंदगी क्या है?
सब छोड़,
गम का दरिया है।
बस मैं चाहता हूँ इस पे आप थोड़ी बात करें कि सवाल ये है कि जिंदगी क्या है आपके नजदीक?
जिंदगी मकामात और मुलाकात का नाम है। ये मुलाकातें हैं मकामात से, कभी अपने साथ, फिर रब के साथ, फिर अपने साथ, फिर लोगों के साथ, फिर मंजिलों के साथ, फिर खुद के साथ, फिर रब के साथ, फिर रब से फिर अपने साथ। ये जिंदगी मुलाकातों का नाम है। तो जिसने मुलाकात ही नहीं की वो मकामात कैसे हासिल करेगा? दूसरा, मुलाकात के बाद ये मकामात का नाम है, फैसलों का नाम है, कदम बढ़ाने का नाम है, फिर से सदाकत, अमानत, अदालत के दर्स को सीखने का नाम, फिर से उस जख्मी टूटे बिखरे हुए दिल ने फिर से वो नेजा और फैसले की वो तलवार उठाने का नाम। अंधेरों के अंदर तूफानों में दिए जलाने का नाम है। टूटी हुई टांगों पर इस जसते खाकी को चलाने का नाम है। जिंदगी हक के लिए अपने कत्ल के रिवाज पैदा करने का नाम है। लोगों के बोझ को अपने सीनों में और अपने सरों पे और कंधों पे उठाने का नाम है। धुतकारने का नाम है, धुतकारे जाने का नाम है, धुतकारने का नाम नहीं, धुतकारे जाने का नाम है। जिंदगी हुजूमों में तन्हा होने का नाम है, मजालिस के अंदर तन्हाई का नाम है, महफिलों में रंगों में बेरंग होने का नाम है। जिंदगी अनदेखे अल्लाह के लिए एक मुसलसल तड़प, एक मुलाकात का नाम है। रोज अपने आप को ये सबक सिखाने का नाम है कि एक दिन मैं मिलूंगा अपनी महमूद से, अपने मकसूद से, अपने मतलूब से, अपने महमूद से, अपने माबूद से। जिंदगी सबर और यकीन के इम्तिजाज का नाम है। जिंदगी सच्चाई और लगन और अमानतदारी के साथ एक ताल्लुक का नाम है। जिंदगी जब तेरी जवाल के सर्टिफिकेट जारी हो जाए, मरने के बाद भी जी उठने का नाम है, फिर से अपनी टांगों पे खड़े होने का नाम। वो मारते मारते थक जाएं, जिंदगी कभी ना मरने का नाम है, अमर होने का नाम है, अमर होने का नाम है और हक के लिए अमर बनने का नाम है। जिंदगी नाम है, एक रोबदार रोब बनाने का नाम है, बातिल पर एक रोब बनने का नाम है, गद्दी छोड़ जाने का नाम है, अहल को सीट पे बिठाने का नाम है, जीत के बाद खामोशी अपनाने का नाम है और तन्हाइयों में एक शोर पालने का नाम है, तूफानों के अंदर कश्ती उतारने का नाम है, मैदानों के अंदर घोड़े उतारने और चलाने का नाम है। जिंदगी 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 को जिंदगी सिखाने का नाम है।
रह गया कुछ?
मेरे ख्याल से आज
मेरे हिसाब से मैं आज सबसे जितने भी ये जितनी भी तादाद के अंदर लोग मौजूद है माशाल्लाह से, मैं चाहूंगा गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को आपने एक दफा अकेले बैठ के जरूर दोबारा सुना है और आपने समझना है कि शेख साहब ने जो बातें की, बातें आपको सुनने में आप हाँ जी बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जिंदगी में चेंज क्या आ रहा है उससे? अगर फैसला नहीं ले पा रहे तो फैसला लो, मुखालफतों से डर कर कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो तो स्टैंड लो, इनिशिएटिव लो, और अगर सबर नहीं आ रहा और ज़र्फ पैदा नहीं हो रहा दिल के अंदर तो वो मिसालें भी इस पॉडकास्ट के अंदर मिल जाएंगी। और आखिर में जब सब कुछ करने के बाद कुछ समझ नहीं आएगा तो ये जवाब सुन लेना कि ज़िंदगी क्या है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर शेख आतिफ के साथ पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मौजूद होंगे और एक नए मौजू को डिस्कस करेंगे ज़िंदगी के, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर सुधार पैदा करें, दीन और दुनिया के साथ इस दुनिया की भी खिदमत करें और दीन की भी खिदमत करें, दुनिया भी हासिल करें और जन्नत में भी आला मकाम हासिल करें।
टॉपिक हम देते हैं ना कि मखरजा कैसे होगा,
निकलेंगे कैसे
फंसे हुए मसाइल के अंदर, 10 तरीकों से कैसे निकलेंगे।
एडवांस में टॉपिक दिया जा रहा है आपको कि टॉपिक ये है कि 10 तरीके के फंसे हुए मामलात में से, पेचीदगियों में से 4 दरवाजे जब बंद हो तो 5वां दरवाजा किस तरह खोलना है, इस पे 10 टेक्निक्स या 10 रास्ते शेख साहब इस पे इंशाल्लाह अगले हफ्ते को इस पे बात करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर, इसमें जो भी हक था वो सब अल्लाह का था, जो भी गलतियां थी अल्लाह ताला उसके लिए माफ करे। खुश रहे, आबाद रहे, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।